खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि वो भला है और उसका शुक्र है कि उसने आज का दिन हम सबको बख्श दिया। और ये दिन उसने इसीलिए दिया है ताकि हम उसके ख्यालात, उसके बयान, उसकी मोहब्बत, उसकी सच्चाई पर गौर करने वाले बने, ताकि हम इस दम तोड़ती हुई दुनिया में खुदावन खुदा के जोर और कुव्वत में जिंदगी गुजारने वाले बने। इसलिए हम सबको हर रोज अपना तवक्कल और अपनी कुम्मक खुदावन खुदा को जानने की जरूरत है। इसलिए जब भी हम दुआ के लिए झुकते हैं, हम यही कहते हैं कि खुदा बाप, तू हमारा रहनुमा हो, तू हमारी रहनुमाई कर, तू हम सबको सिखा कि जिस राह पर जाना है। सो इसलिए आज हमने अहदनामा में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका चार बाप, उसकी पहली आयत से छठी आयत तक पढ़ेंगे और चौथी और पहली आयत में से चंद एक बातें सीखेंगे, चाल चलन, जिंदगी गुजारने और बुलाहट के बारे में। और खुदावंद का बंदा यूं कहता है, नए अहदनामा में से इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका चार बाप पहली आयत, पस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ, तहम्बुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह कि यगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हमने कल सीखा कि हर एक को किसी ना किसी बुलावे से बुलाया गया है, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चर्च में, कलीसिया में बहुत सी मुख्तलिफ खिदमात हैं, पादरी की, मुबशर की, निगाबान की, इंतजामिया की, एल्डर साहबान की, फिर कलीसिया में शख्सी तौर पर हर एक बंदे की खिदमत, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देना और उसके लिए जिंदगी बसर करने में वो तमाम काम शामिल हैं। सो हर एक को कोई ना कोई बुलावा या कोई ना कोई बुलाहट मिली है कि तुम्हें ये करना है। और यहां पर भी खुदावंद का बंदा पालूस रसूल क्रंथस की कलीसिया को, और यहां पर इफ़सस की कलीसिया को, और फिर कुलसियों की कलीसिया को, और फिर गलतियों की कलीसिया को, इन सब को वो उनके बुलावे के बारे में बयान करता है, सिखाता है कि तुम्हारा बुलावा क्या है। और यहां पर वो ईमानदारों से कहता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इफ्सियों का खत वाहद ऐसा खत है जो ना कि सिर्फ इफ्सियों ही में पढ़ा गया, बल्कि बहुत सी दूसरी कलीसियाओं में भी इसका पढ़ा जाना जरूर हुआ। इसे पढ़ा गया, इससे बहुत से लोगों ने बरकत पाई। जब हमने शुरू में देखा था कि पहली आयत में पालूस ने कहा कि मैं पालूस जो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी से रसूल हूं, उन तमाम मुकद्दसीन के नाम जो इफ़सस में हैं, तो इफ़सस की जगह जब दूसरी जगह पर यह खत पढ़ा जाता था तो वो अपना नाम लेते थे कि पालूस की तरफ से जो रोम में है मिसाल के तौर पर, जो तुर्की में है मिसाल के तौर पर, और हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं अपनी जात की तरक्की के लिए कि उन तमाम मुकद्दसीन के लिए जो आरिफ वाला शहर न्यू क्रिश्चियन क्लूनी में रहते हैं। तो पालूस रसूल चौथे बाप में इस बात को कहता है पहली ही आयत में कि मैं खुदावन में कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि उस बुलावे के मुआफिक चाल चलो। चाल चलो से मुराद यानी कि जिंदगी गुजारो जिसके लिए तुम्हें खुदा ने अलहदा किया है। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से नबियों के बारे में, बहुत से पैगंबरों के बारे में जिक्र मिलता है जिनको खुदा ने अलहदा किया कि उसकी खिदमत करें। इसलिए हमें इस ज़मीन पर रहते हुए किस तरह चलना है? खुदावंद खुदा की उस बुलाहट के मुताबिक चलना जिसके लिए, जो यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ है उससे हमें जो मतलब मिलता है, ज़िंदगी गुजारना। ज़िंदगी गुजारना, चलना, रोज़मर्रा के हमारे ज़ाबताए हयात के, ज़िंदगी के तरीके कार कैसे होने चाहिए। सो आज इस गना से भरी हुई दुनिया में, आज इस बेवफाई से भरी हुई दुनिया में, आज इस बेतमनानी से भरी हुई दुनिया में, जंगो जदल और फिर दुख और बीमारी और परेशानी हर तरफ हमें नज़र आ रही है। सो उसमें हम किस तरह अकबाल मंदी या तरक्की हासिल कर सकते हैं? उसी तरह जिस तरह खुदावन खुदा ने अपने कलाम में यशुआ के लिए लिखा। आपको याद होगा कि यशुआ को खुदावन खुदा ने क्या कहा था? जब मूसा की वफात हो गई, मूसा मर गया, तो खुदावन खुदा का बोलना और गुफ्तगू करना किसके साथ हुआ? यशुआ के साथ। और यशुआ को खुदावन खुदा ने क्या कहा, मेरे साथ देखें। यशुआ की किताब उसका पहला बाप, यशुआ की किताब उसका पहला बाप जब हम देखते हैं, पहली 9 आयात को देखते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, तो पहली 5 आयात में खुदावंद खुदा ने मूसा के बारे में कहा कि मेरा बंदा मूसा वफात पा गया है, मर गया है, अब नून का जो बेटा है यशुआ, तुझे इस खिदमत को करना होगा। और यशुआ क्या है? घबराया हुआ है, वो अपने अंदर ये महसूस कर रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मैं कैसे संभालूंगा। तो खुदावन खुदा उसे याद दिलाते हुए 5वीं आयत में कहता है, यशुआ से बात हो रही है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। ये खुदावन खुदा ने यशुआ से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये खुदावन खुदा ने यशुआ से कहा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा, यानी कि तुझसे दूर ना होऊंगा, और ना तुझे छोड़ूंगा। ये खुदावन ने किससे कहा? यशुआ से कहा। और 6 आयत, उस टूटे हुए हौसले वाले बंदे को खुदावन ने कहा, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। सो खुदावंद उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा था कि इस जिम्मेदारी को पूरा कर, हौसला रख, मजबूत हो जा। और खुदावंद ने अपने रिकॉर्ड की बातें भी बताई कि मैं मूसा से वफादार रहा और इसी तरह तेरे भी सामने कोई टेक नहीं सकेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सुझे सर क्या करने की ज़रूरत है? चलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और 7वीं आयत में, तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा के इख्तियार रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। खुदावन ने उससे कहा कि ना दाएं ना बाएं मुड़ना, मेरी तरफ मुतवज्जा रह, सुन। और जो भेद की बात जो यशुआ की ज़िंदगी में तरक्की का बायस थी, जिसने यशुआ को मसीही जिंदगी या खुदावन की पीछे चलने की कुव्वत और ताकत बख्शी, और वो राज क्या था? वही राज हम सब के लिए भी आज बहुत ही भला है। 8वीं आयत, खुदावन खुदा ने क्या कहा यशुआ से, शीरियत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शीरियत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यानी कि तू इसके बयान करने से, इसके पढ़ने से, इसके बारे में सोचने से कभी भी अपनी सोच ना हटाए। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन उस सब पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, इख्तियार करके अमल कर सके। कब होगा? जब शरीयत की ये किताब, जिसे क्या कहते हैं कि खुदा ने जो अहद उन्हें दिया था, जो 10 अहकाम थे, शरीयत थी जो मूसा के वसीला से उनको लिखी हुई सूरत में मिली थी, खुदावन खुदा ने कहा कि इसे अपने दिल दिमाग से कभी ना हटाना, अपनी ज़िंदगी से कभी भी इसे अनदेखा ना करना, बल्कि दिन रात तेरा इसी पर ध्यान रहे। और हम जानते हैं कि यशुआ ने ऐसा ही किया, उसने सब पर इख्तियार करके अमल कर किया, और लिखा है क्योंकि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मसीही जिंदगी में भी जैसे पालूस ने कहा है कि अपने बुलावे के मुताबिक, जिस नाम से, जिस खिदमत से खुदा ने तुमको बुलाया है, तो चलो उसमें जिंदगी बसर करो, तो फिर हमें इकबाल मंदी, तो फिर हमें कामयाबी, तो फिर हमें वो मंजिल मिलेगी जिसके लिए खुदावन ने हमें मुकरर किया है। यशुआ ने अपनी जिंदगी में अजीब अजीब काम किए, क्योंकि खुदावन खुदा ने उसे कहा था कि तू जा, दलेर हो, नहायत मजबूत बन, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं। इसी तरह खुदावन खुदा का वही जोर, वही कुदरत, वही कलाम हमें इस तहरीरी सूरत में लिखी हुई हालत में दिया गया है। और पालूस कहता है जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे, हमें अपना अपना बुलावा जानने की जरूरत है। ये बुलावा हो सकता है पहले ही जानते हो, और ये हो सकता है कि आपको और 5 साल लग जाएं, और 1 महीना लग जाए, और वक्त लग जाए कि आपकी खिदमत क्या है मसीह के बदन की तरक्की के लिए, तो उसे करने वाले बने, क्योंकि हर एक को खुदा ने अपने मकसद के लिए बनाया है। पंखों को हवा देने के लिए, कुर्सी को बैठने के लिए, दरियों को भी बैठने के लिए, और फिर खाने के लिए और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंसान को खुदा ने बनाया है कि उसकी मर्जी को पूरा करे, उसके मंसूबे को जो उसने तैयार किया है उसे जाने। और पालूस ने अपनी जिंदगी में जाना, और वो कहता है कि मैं खुदावन में जो कैदी हूं, तुमसे ये इल्तमास करता हूं कि अपने बुलावे के मुताबिक, अपनी जिंदगी की बुलाहट के मुताबिक, जो कुछ भी खुदावन खुदा ने तुमको खिदमत दी है उसके मुआफिक चाल चलो। जो कोई भी लकब खुदावन ने तुम्हें दिया है, जैसे बहुत से लकब हमें मिलते हैं कलीसियाई तौर पर, हर ईमान लाने वाले को बेटा और बेटी कहा गया है खुदावन खुदा का, वो कहता है इसके लायक चाल चलो कि खुदा के बेटे और बेटियां कैसे होते हैं। इतजमाई तौर पर वो फिर कहता है कि हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि ले पालक बेटे होने की रूह मिली है, इसलिए हम उसे अब्बा यानी ए बाप और खुदा कहकर पुकारते हैं। वो कहता है इस सच्चाई पर जिंदगी बसर करो, हमें दहशत और खौफ की रूह नहीं मिली जैसे तमोथियस को पालूस ने कहा, बल्कि कुदरत और इख्तियार की रूह मिली है, उसके माफिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जैसे यशुआ बेदिल था, वैसे ही तमोथियस एक दौर में बेदिल था, वो छोड़ने को था सब कुछ, तो पालूस ने उसे कहा कि हमें खौफ की, शिकस्ता दिली की रूह नहीं मिली, बल्कि दलेरी की और जोर की और कुव्वत की रूह मिली है, उसके मुआफिक जिंदगी गुजारो। पालूस भी यही बार बार कहता है, यही कहता है मिसाल के तौर पर इफ़सियों 5 बाप उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, अब खुदावन में नूर हो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम दुनिया का नूर हो, और जो कोई नूर है वो छुपकर नहीं बैठता। हमें अपनी जिंदगी से, चाल चलन से, अपने ईमान से, अपने कामों से किसके नाम को इज्जत और जलाल देना है, खुदावन खुदा के। और लिखा है कि मगर अब खुदावन में नूर हो, पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। नूर किसे कहा गया है, खुदावन खुदा को, क्योंकि वो ही नूर है, सिवाय उसके कोई और नूर नहीं है, जिसके बारे में पहला यूहन्ना उसका पहला बाप बड़े वाज़ेह तौर पर कह देता है। पहला यूहन्ना, यूहन्ना का पहला आम खत, उसका पहला बाप, उसकी 5वीं आयत, यूहन्ना कहता है लिखते हुए, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा सी तरीकी नहीं, उसमें जरा भी तरीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। खुदावन जानता है, हम भी जानते हैं कि जब हम खुदावन की रहनुमाई में नहीं चलेंगे तो हमारे काम, हमारी जिंदगी, हमारा चाल चलन यीशु मसीह को जाहर या जलाल नहीं देगा। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि वो नूर है और हमें उसके नूर में चलने की जरूरत है। सो अपने अपने बुलावे के मुआफिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें।